ख्वाब में ये देखे कि वो मर गया है, तो इसकी ताबीर ये है कि इसको इसकी जिंदगी अब तवील हो जाएगी। और अगर कोई शख्स ये देखे कि ख्वाब में कि उसकी शादी हो रही है, तो इसके मायने कि उसकी मौत करीब है। ये बाकायदा ये तो ख्वाब की ताबीर आयतुल्ला दस्ते गैब शिराजी ने जो बताई है उस सिलसिले में जो कुरानी इस्तेआरात को इस्तेमाल किया है, तो उसमें उन्होंने ये ताबीर बताई। तो एक खातून का आने लगा था फोन के, मैं तो कई दफ़ा देख चुकी हूँ और वो घबरा गई और घर में कोहराम मच गया कि अब उनकी मौत करीब हो गई। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि इस तरह से ताबीर बयान की जाती, यानी ख्वाब में अगर हम ये देख रहे हैं कि मौत आ रही है, तो इसका मतलब है जिंदगी तवील होगी। कफन को हम गाहे बगाहे देख रहे हैं और मुहैया करके अपने लिए रख रहे हैं, बल्कि कोशिश ये करें कि अगर कफन की उस एक चादर को निकाल कर अगर आप उसको अपने ऊपर ओढ़ कर उसमें नमाजें भी पढ़ें तो बहुत अच्छा, और गाहे बगाहे उसको पहनकर, यानी कभी कभार महीने दो महीने में आप निकालें उसको और पहने, और आप याद करें कि एक दिन इसी कफन में मैं जो है वो लपेटी जाऊंगी और इस तरह से कब्र के अंदर पहुंचूंगी। और पुराने उलमा का तरीक़ेकार भी रहा है कि अपने घरों में भी कब्र खुदवा कर रखते थे, और अब भी हो सकता है किसी जगह हो, लेकिन अब यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं रही, खासतौर पर हमारे माशरे के अंदर के ऐसा काम करें और जगह भी नहीं रही इन सब चीज़ों की। तो बहरहाल लेकिन लोग पहले ही करा करते थे कब्र के अंदर लेट कर जो है वो अपने मरने का इस्तेहजार किया करते थे, कुछ आमाल किया करते थे उसके अंदर बैठ कर भी, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको आलम आखरत की याद दिलाती। कल को यही गड़ा होगा जिसमें हम में से हर शख्स को जाना, हर शख्स को इसके अंदर जाना, किस तरीके से होगा ये सब आपके सामने के बहर असल और हदफ और आखिरी मंजिल हमारी ये है। इसकी गाहे बगाहे भी अगर आप चीज़ें देखती रहें, बाकायदा बहुत से उलमा ने तो एक तरीक़ेकार भी बयान किया कि अपने किसी भी मरहूम दोस्त या सहेली की आप तस्वीर लेके अपने किसी मरहूम रिश्तेदार की आप निकाल के उसको गाहे बगाहे देखा करें। कल कोई हमारे साथ उठता था, बैठता था, हंसता था, खेलता था, बातें किया करता था, आज ये हमारे दरमियान नहीं और इस तरह से कब्र में जाकर लेट गए। कुछ ही अरसे बाद हर शख्स का नंबर एक के बाद एक लगा हुआ है, बहरहाल इसी गढ़े के अंदर जाना है उसको। ये अगर मंजर आंखों के सामने रहेगा तो खुद बखुद गुनाहों से इज्तनाब करेगा, हर वक्त उसके दिमाग में एक तस्वीर रहेगी। जब भी बहुत सी रिवायतों में यह बात आई है कि मोमिन कामिल वो है कि जो कि कम से कम रोजाना 20 मरतबा मौत को याद करे, 20 मरतबा मौत को याद करे। तो याद करने के मायने नहीं कि वो तस्बीह लेके बैठा रहे और मौत 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 पढ़ता रहे उसके ऊपर, यानी मुख्तलिफ ऐसी चीजें दिमाग में लेकर आए, देखे, एक दूसरे से किस्से बयान करे, और ताकि ना ये तमाम चीजें मौत की याद पैदा करती हैं, और जो मौत की याद खुद गुनाहों से इंसान की हिफाजत करती। कुछ पता नहीं आफात नागहानी आपके सामने आ रही हैं, लोग किस किस तरीके से मर रहे हैं, जलजलों के जरिए मर रहे हैं और मुख्तलिफ सैलाबों के नतीजे के अंदर मर रहे हैं और सुनामियों के नतीजे में मर रहे हैं, और वैसे ही मर रहे हैं रोजाना। हम तो कराची के अंदर मौत के जितना रक्स हम लोगों ने देखा है किसी भी और शहर वालों ने शायद ही कभी देखा हो, तो आंखों के सामने इबरतें बिखरी हुई, बस इसका एहसास करना है कि एक के बाद एक नंबर लगा हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा है कि जब कभी मुर्गी खरीदने जाते हैं तो कसाई का एक हाथ अंदर जाता है और मुर्गियों में से कोई एक मुर्गी का इंतखाब करके वो निकालता है और बाकी मुर्गियां जो हैं अपनी बारी का इंतजार कर, सबकी बारी लगी हुई है उस पिंजरे में से, सबका नंबर आना है। तो बहरहाल इसका दिमाग में अगर इंसान मौत का अपने ख्याल रखे, यही वजह है कि खुद आइम्मा की अपनी औलादों में से एक खातून गुजरी जिनका नाम था सैयदा नफीसा, इनके नाम का एक दस्तरखान भी ईरान में होता है सुफरा सैयदा नफीसा के नाम से, बाकायदा जिस तरह इमाम हसन का दस्तरखान हमारे यहाँ होता है और दीगर, और तो इस तरह सैयदा नफीसा का दस्तरखान भी होता है। सैयदा नफीसा वो है जिन्होंने अपने घर में अपनी कब्र को खुदवाया हुआ था, और बाकायदा मिस्र में इनकी इनके इनसे मनसूब एक मस्जिद भी है, वहीं इनकी कब्र भी है। और सैयदा नफीसा ने अपने घर में अपनी कब्र खुदवाई हुई थी, और एक रिवायत के मुताबिक या उस हिकायत के मुताबिक अपनी कब्र में बैठकर 2500 मरतबा कुरान खत्म किया था। ऐसी ऐसी खवातीन गुजरी हैं मौत की याद के सिलसिले में, इंतहाई मुकद्दस तकवा परहेजगारी और इल्म से भरपूर सैयदा नफीसा अपने घर में अपनी कब्र खुदवाई हुई थी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि बहरहाल मौत की याद अगर इंसान के दिलो दिमाग में हर वक्त रहे तो फिर گناہوں سے خود بخود اس کی حفاظت ہو جائے گی. کل کو سوچیں آپ کے جو غسل خانوں کا جو تختہ ہوتا ہے جس پہ مردوں کو نہلایا جاتا ہے، کل ہمارا جسم اسی طریقے سے اس تختے کے اوپر رکھا ہوگا، کہاں چلی جائیں گی وہ ساری چیزیں، وہ ساری کپڑوں سے بھری ہوئی الماریاں، وہ سینکڑوں جوتے اور وہ بازاروں کے چکر لگانا، وہ سب آپ کو کل یاد آئے گا اس موقع پر. لیکن اس وقت کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، فضولیات میں اپنی پوری زندگی کو ضائع کرتے چلے گئے، جانا اسی تختے کے اوپر ہے بالآخر، اور بہت زیادہ عرصہ نہیں رہا اس کے اندر. تقریباً جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اپنی عمر عزیز کا تقریباً آدھا گزار چکی. تو بہرحال انسان ہر وقت یہ احساس دلانے والا، خدا نخواستہ کوئی بدشگونی نہیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، بلکہ یہ خود اس حیات ابدی کی طرف آپ کو راغب کر رہے ہیں کہ آپ کی وہاں کی زندگی ایک خوش و خرم اور ایک اطمینان کے ساتھ جو گزرے. تو بہرحال یہ انسان کے دماغ میں رہے کہ چاہے کتنے ہی چھوٹے ہوں چاہے کتنے ہی بڑے. امام خمینی کی قبر ہے جب کھودی گئی تھی جس میں امام خمینی دفن ہوئے، کہ بہرحال سب کا انجام وہ یہی ہے. اب چاہیں اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اس کو قرار دے دیں، اور گناہوں کے اندر ویسے ہی مبتلا رہیں جس طریقے سے اب تک مبتلا رہے ہیں ہم سب. قبرستان بھرے ہوئے ہیں، کل تک یہی لوگ ہنستے تھے، کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے، آج سب کے سب دفن. لیکن وہ افراد، یہ جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے جس کے اندر حضرت خدیجہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب اور خاندان بنو ہاشم کے کتنے ہی یہ نام بڑے اطمینان سے آپ لوگوں نے سن لی اور کوئی درود نہیں پڑھا. جی مکے میں، اور یہ وادی السلام کا قبرستان ہے نجف میں، وادی السلام جس میں مقام صاحب الزماں بھی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت صالح. حضرت صالح اور حضرت ہود کی قبریں بھی یہاں پر ہیں، اور نہ جانے کتنے صالحین یہاں پر ہیں، اور یہ قدیم ترین قبرستان ہے عالم انسانیت کے حوالے سے بھی. جی وادی السلام کا قبرستان ہے کہ جو کہ وہ جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے، وہ مکے میں. امام زمانہ علیہ السلام کی مستقل بیٹھکوں میں سے ایک جگہ ہے کہ جہاں امام زمانہ اکثر تشریف لاتے ہیں، ان جگہوں سات آٹھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امام زمانہ کا آنا ثابت ہے. اللہم صل علی محمد. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اپنی موت کو جس قدر انسان یاد کرے گا اتنا ہی گناہوں سے دور ہوگا، ورنہ غفلت والی زندگی اور عیش و طرب کی زندگی اور لاپرواہی والی زندگی تو گزارتی چلی جائے، یہاں تک کہ فرشتہ اجل آ جائے گا اور وہ تختہ آپ سے پہلے دیکھا وہاں پر سفید کپڑے میں لپٹی پڑی ہوں گی. اچھا ہم دیگر جیسے مملکت اسلامی ایران، وہاں عورتیں عام طور پر قبروں کے پاس جا کر بیٹھتی ہیں اور دعائیں پڑھتی ہیں اپنے عزیز و اقارب کی، باقاعدہ انہوں نے، خیر ہمارے یہاں کے تو قبرستان زیادہ تر کوئی بھوت بنگلہ ٹائپ کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، وہاں بہترین قبرستان انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہاں بچے کھیلتے بھی ہیں، لوگ وہاں جا کے پکنک بھی ایک لحاظ سے جس طرح کا پکنک والا ماحول ہو جاتا ہے نا، کھانا وانا بھی لے کر آئے ہیں، وہیں اپنے اقارب کی قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اعمال بھی انجام دے رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں. اگلا طریقہ ہے گھر میں کوشش کریں کہ دینی کتابوں کی بھرمار ہو گھر میں. دیکھیں جتنا گھر میں دینی کتابیں آپ کی بکھری ہوئی ہوں گی، بکھری سے مراد بے ترتیب نہ پڑی ہوں، ہر کمرے کے اندر کچھ نہ کچھ کتابیں ضرور ہوں، ڈرائنگ روم میں جو سینٹر ٹیبل ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کتابیں ہوں، حتیٰ کہ بعض اوقات کچن میں بھی کوشش کریں کہ کچھ کتابیں ہوں، ڈائننگ ٹیبل پہ بھی کچھ کتابیں ہوں، آپ کے سرہانے بھی کچھ کتاب ایک چھوٹی سی ایک ضرور وہ رکھیں. میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ٹیبل لیمپ چھوٹا سا ایک ضرور لیں سونے سے پہلے تاکہ لوگ اور ڈسٹرب نہ ہوں، وہ آپ جلائیں، روزانہ آدھا گھنٹہ سونے سے پہلے 15 منٹ ضرور مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں ان کتابوں دینی کتابوں میں کیا ہوتا ہے، قرآنی آیات ہوں گی، احادیث معصومین علیہ السلام ہوں گی، ان سے خود ایک نورانیت نکلتی، یہ اگر بند بھی پڑی رہیں تو باعث برکت ہوتی، شیاطین وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں. ہر جگہ جب یہ ہوں گی، اور کوئی نہ کوئی شخص گھر میں جو افراد کبھی نہیں بھی کچھ پڑھتے ہیں اور دین کی طرف راغب نہیں ہے، کبھی نہ کبھی وہ کتاب اٹھا کے ضرور پڑھ لیں گے. लेकिन ऐसा ना हो कि वो शेल्फ के अंदर हो और उसके अंदर लॉक भी लगा हुआ हो या अलमारियों के अंदर बंद हो और पता भी ना चल रहा हो किसी को, एक्सेस में होनी चाहिए किताबें। बल्कि हर शख्स की, बल्कि तरबियत औलाद के उसूलों में से एक है, चाहे बच्चा 4 या 5 साल का ही क्यों ना हो, उसकी एक चाहे एक छोटी सी शेल्फ ही क्यों ना हो जिसके अंदर वो अपनी किताबें आप उसे दिलवाएं और वहां लाके वो किताबें, चाहे छोटी छोटी कलरिंग बुक ये वो इस तरह की बहुत सारी चीजें, जहां उसका अपना पूरा होल्ड हो उस जगह के ऊपर, कोई उस जगह को हाथ ना लगाए, कोई उस जगह को छेड़े नहीं आकर, और जो है वो उस बच्चे के लिए मखसूस हो। हर बच्चे की एक शेल्फ हो और फिर एक जाती लाइब्रेरी जिस तरह कहा जाए, चाहे वो बहुत छोटी क्यों ना हो, चाहे वो 15 किताबों में मुश्तमिल हो, 20 किताबों में मुश्तमिल हो या 2000 किताबों में मुश्तमिल हो, अगर बड़ा आदमी है, हर शख्स की एक अपनी एक जाती लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अहम तरीन बात है कि घर में जब ये किताबें बिखरी हुई होंगी, कितने हमारे उलमा का तरीक़ेकार आयतुल्लाह सादिक शिराजी हैं आपके सामने, और किताबें बिखरी हुई हैं, हर वक्त एक्सेस है किताबों में, ये नहीं कि कहीं वक्त सीढ़ियाँ लगा के चढ़ के उतार के लाना पड़ रही है और बड़ा मुश्किल से जो है वो उस तक एक्सेस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आयतुल्ला शेख इसहाक फैयाज 2 ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक तकरीबन पाकिस्तान से, क्वेटा से इनका ताल्लुक है, और इस वक्त 4 महाराजे या 5 महाराजे में से एक हैं कि जिनकी आजकल तकलीद भी हो रही है। आयतुल्ला इसहाक फैयाज देख रहे हैं कि मेज इनके ऊपर किताबें की किताबें नजर आ रही हैं। हम अगर हों तो सबसे पहले किताबें जाके साफ करें, मेज बिल्कुल साफ नजर आनी चाहिए, कोई गर्दो गुबार तक ना कोई किताब हो ना कुछ नहीं, यही इस मेज की जीनत है ये किताबें, हम ये सफाई है नहीं, इसकी जीनत नहीं होंगी कि बिल्कुल चटियल मैदान हमने घर को किताबों के हवाले से बनाया हुआ हो। तो बच्चों के लिहाज से भी, हत्ता के कंप्यूटर हैं उनके डेस्कटॉप पे इस तरह की चीजें डालेंगे, गाहे बगाए वो देखें सुने भी यही चीजें, उनको लाकर मुहैया करनी पड़ेंगी ये तमाम की तमाम चीजें। तो कोशिश ये करें कि इस तरह से हो कि घर में एक लाइब्रेरी जरूर, कुछ एक ऐसे शेल्फ होने चाहिए आपके पास कि जो खास तौर पर जब ये नूरानियत इस तरह से बिखरी हुई होगी, इनसे ऐसी नूरानी शुआएं और बरकतें निकल रही होंगी, तो शयातीन का फिर वहां पर गुजारा बहुत मुश्किल नहीं हो सकेगा। आयतुल्ला मरशिया नजफी इन्होंने इतने देखा जाए तो गुर्बत भी ये थी इसकी एक वजह कि सारी जिंदगी आयतुल्ला मरशिया नजफी ने हज नहीं किया, हज के पैसे भी नहीं हो सके, लेकिन एक वजह और भी थी कि जिसकी वजह से हज नहीं किया था, जो कभी और बताऊंगा आपको। तो आयतुल्ला मरशी नजफी लेकिन इतनी बड़ी कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बना के गए, जो भी अफराद कौम की ज्यारत के लिए गए हैं उनको जरूर वो लाइब्रेरी जाकर देखनी चाहिए, हरम मासूम कौम के बिल्कुल सामने वो लाइब्रेरी है जो आयतुल्ला मरशी नजफी ने कायम की। और इतना ज्यादा इस मामले में वो थे, चाहते तो खुद हरम मासूमा के अंदर दफन हो सकते थे। 35-40 साल तक हरम के अंदर जब सुबह के 3-3:30 बजे हरम खुलता है तो पहला कोई शख्स जो कि अंदर दाखिल होता था आयतुल्ला मरशिया नजफी थे, दरवाजे हरम के पास बाहर आकर बैठ जाते थे और दरवाजा खुलते ही अंदर दाखिल होते थे। ये चाहते थे तो वहां भी दफन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस लाइब्रेरी के दरवाजे के करीब दफन होऊंगा ताकि दीनी तालिबिल वहां से जब गुजरे तो उनकी गर्द पांव की उड़ उड़ कर मेरी कब्र पर गिरे। यह आयतुल्ला मरशिया नजफी किताबों की इस लिहाज से एक अहमियत, तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी इन्होंने बनाई सिर्फ इस वजह से, तो लाइब्रेरी का कोई कब्रिस्तान थोड़ी बनाना है, पढ़ने के लिए है लाइब्रेरी। ये तो कहा कि मैंने कहा कि रखी हूं, लेकिन उसका मकसद यही है कि पढ़ा जाए उसको, उन किताबों को। और आपको पता है कि सलमान फारसी जिनके मुतालिक कहा जाता है कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये रिवायात आई हैं जिनके लिए, और जो ईमान के 10 के 10 हिस्सों पर फाइज हैं, इनका ईमान लाने का वाकया क्या है, एक किताब घर की 2 छत्ती पर एक दफा चढ़े थे, वहां पर एक किताब इनके बुजुर्गों में से किसी ने लेकर रखी हुई थी, जब इन्होंने ये उतार कर नीचे लाया, उसको खोलकर मुताला करना शुरू किया तो आखिरी जमाने के जो पैगंबर की खसूसियात बयान हुई थी, फिर उनकी तलाश में निकले, यहां तक कि पैगंबर के पास आए, इस्लाम कबूल किया और ईमान की इस बुलंदी को हासिल किया कि 10 के 10 हिस्सों पर ईमान के फाइज हो गए। यही सलमान फारसी जिनका रोजा मदाइन के अंदर है, जिनकी कब्र मदाइन में है, उनके ईमान लाने का वाकई किताब के जरिए है। आपको क्या पता घर में कोई फर्द कब किस मौके पर किताब की कौन सी इबारत पढ़ ले और बिल्कुल तब्दील हो जाए, क्या मौजज़ा उसकी शख्सियत के अंदर आ जाए। तो बहरहाल ये सलमान फारसी की कब्र है, एक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी अहमियत थी किताबों की, खुद आयतुल्ला मरशिया नजफी एक एक किताब को हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात एक एक साल की नमाजें और एक एक साल के रोजे इजारे पर लिया करते थे, कि हम एक किताब को खरीदने के लिए जितने पैसों की जरूरत होती है उसमें पूरे साल की नमाजें इजारे पर लेकर पढ़ा करते थे, मरहूमीन की जो कजा नमाजें होती हैं वो एक एक साल के रोजे, एक रोजा हमसे नहीं रखा जाता अपना वाजिब, और वो दूसरे मरहूमीन के रोजे अपने जिम्मे लेके और इजारे के ऊपर रख के, और एक ताकि किताब को खरीद सके, और वो किताबें इतनी फरावानी के साथ दस्तियाब हैं, लाइब्रेरियों में दस्तियाब हैं, घरों में दस्तियाब हैं, फ्री में मिल जाती हैं, एक दूसरे से आरियतन आप ले सकती हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं पढ़ने को तैयार होता, तो उसे बदकिस्मती ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। फिर उसके बाद अगला तरीका है कि हमें जो ये सब चीज़ें गुनाहों में मुबतला होते हैं उसकी बड़ी वजह यह कि हमारा ईमान और यकीन हमारा कमज़ोर है, अपने यकीन और ईमान में इजाफा करना पड़ेगा। यकीन और ईमान, जैसे मैंने पहली जो नशिस्त हुई थी उसमें भी बात कही थी कि हमें जिन बातों का यकीन होता है कि नुकसान पहुंचाने वाली हैं हम उनमें से किसी भी बात को अंजाम नहीं देते। मसलन हमें पता है कि आग जो है हमें जला देगी, हम कभी अपना हाथ जो है आग के अंदर नहीं डालते। मसलन हमें पता होता है कि अगर हम घर की छत से नीचे छलांग लगाएं तो कितनी ऐसी मिसालें होता, हम जब औजाव वगैरह कर रहे थे तो हमें मालूम चला था कि बच्चा चौथे फ्लोर की छत से नीचे गिर पड़ा था जमीन पर और उसे खराश तक नहीं आई, तो हमने नहीं, कितनी ऐसी मिसालें कि लोग छत से नीचे गिरे हैं लेकिन फिर भी बच गए, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं की कि हो सकता है हम भी बच जाएं, लेकिन हम कभी भी नहीं करते कि हम छलांग लगा के देखें क्या होता है क्या नहीं। हत्ता कि यकीन तो छोड़िए शुबे में भी नहीं, शुबा क्या जिसमें सिर्फ इतना कम हो कि मसलन 1,00,000 गिलास रखे हुए शरबत के और आपको ये कहा जाए इन्हें 1,00,000 गिलासों में से किसी एक गिलास में जहर मिला हुआ, तो आप पूरे 1,00,000 गिलासों को छोड़ देंगे? नहीं भाई, एहतमाल तो है ना इस बात का। नेकियां आप कहते हैं कि बहुत सारी नेकियां मुस्तकबिल में उधार होती हैं, जो इंश्योरेंस आप कराते हैं 25-25, 30-30 साल का, उसके बाद कहीं जाके उस चीज का फायदा मिलना होता और वो भी यकीनी नहीं होता कि फायदा मिलेगा भी या नहीं। एक इंश्योरेंस एजेंट मेरे दोस्त हैं तो अक्सर मैं उनसे ही कहता हूँ जो मेरे पीछे लगते हैं इंश्योरेंस करने में, कहता हूँ कि ये बताइए कि मरे बगैर क्या फायदा है इसमें, मरने के बाद तो बहुत सारे फायदे आप बताते हैं, हमारी जिंदगी का फायदा बताइए। तो बहरहाल क्योंकि हमें यकीन होता है बल्कि शक होता है बल्कि एहतमाल बल्कि वहम भी किसी चीज का होता है तो हम उस काम को नहीं करते, लेकिन इसके मुकाबले में हम देखते हैं कि हम गुना पे गुना करते चले जा रहे हैं जिनके लिए अजाब जहन्नुम का वादा है। इसका मतलब यह कि हमारा यकीन ही नहीं है उसके ऊपर, वरना कैसे आप अंजाम दे रही हैं उन चीज को, उन तमाम चीजों को, आप नेकियों को कैसे छोड़ रहे हैं जबकि महूम से फायदे के लिए प्राइस बॉन्ड जिस तरह के लोग लेते हैं और कितना कम इम्कान होता है कि आपका प्राइस बॉन्ड निकलेगा, लेकिन फिर भी आप साल आ साल लेके प्राइस बॉन्ड अपने पास रखती हैं। क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि आपको उम्मीद है हल्की फुल्की कि शायद फायदा होगा। इसका मतलब है कि नेकियों की उतनी उम्मीद नहीं कि सवाब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, यानी अल्लाह के किए गए वादों पर हमें कोई यकीन नहीं, उसकी की गई वईदों पर और जो अजाबों का तस्करा किया इस पर भी हमें कोई यकीन नहीं, जब भी हम अपने गुनाह पे गुनाह अंजाम देते चले जा रहे हैं। तो अपने यकीन और ईमान को बढ़ाने के तरीक़ेकार पे अमल करना चाहिए, लेकिन उनके तरीक़ेकार बढ़ने के क्या हों? यकीन के आयतुल्ला दस्ते गैब शिराजी की किताब है जिसका नाम ही है यकीन, उर्दू में दस्तियाब है, यह आप लेकर पढ़ें, उसमें यकीन को बढ़ाने के तरीके सब लिखे हुए हैं। जो वो मैं यकीन बढ़ाने के तरीकों पर गुफ्तगू शुरू करूंगा तो पूरा दर्स आज का रह जाएगा, तो बेहतर है कि मैं रेफर कर रहा हूं। अभी किताबों की अहमियत बयान हुई है आपके सामने, आप इस किताब को बाजार से लेकर खरीदें, पतली सी किताब है, मुश्किल से शायद 60-70 पेज की किताब है, आप यकीन नाम है उसका, शहीद दस्ते गैब शिराजी की। जब यकीन में इजाफा होगा आपके और ईमान में इजाफा होगा तो खुद ब खुद उसका लाजमी नतीजा है कि गुनाह आपसे कम होते चले जाएंगे, ये एक चीज है। उसके बाद एक और मसला यह है कि हम खुदा को हाजिर और नाजिर नहीं समझते। मसलन अगर किसी भी जगह आपके कमरे में इस जगह पर यहां 5-7 कैमरे लगा दिए जाएं और आपको पता हो कि इन कैमरों इसके जरिए आपको कहीं देखा जा रहा है, देखा आपने कितने दफा देखा होगा कि जरा सा भी अनाउंसर कभी उसको खांसी भी आ जाती है हल्के से तो माजरत करता है आपसे, कितना अलर्ट होके बैठता है कि मुझे सारे लोग देख रहे हैं। ये खाती इंसान जो हो सकता है देख रहे हो सकता है उनकी निगाह बच जाए, हो सकता है नहीं भी देख रहे हो, उनकी कितनी परवाह होती, और हमें पता चल जाए कि जनाब इतने कैमरे लगे हुए और हमें एक एक चीज देख रहे हैं तो हम कितना अपने आप को संभल संभल के गुफ्तगू करेंगे, कोई नाजेबा बात नहीं करेंगे। गुनाह तो छोड़िए, छींकना और खांसना जिस पे किसी का कोई इख्तियार नहीं है ना इसको कोई बुरा मानता है, उस पर भी लोग माजरत करते हैं कि माफ कीजिएगा। तो इसके मायने ये हैं कि हम खुदा को हाजिर और नाजिर समझते नहीं। ये पूरी दुनिया इमाम खुमैनी फरमाते थे महजर खुदा, या आंखों के सामने ऐसे ही जैसे कोई शख्स आपको बैठकर आपको देख रहा हो, बाकायदा एक पूरा पैनल हो, सब आपको देख रहे हैं, तो आप खुद सोचे कि आप कभी किसी गुनाह की तरफ जाएंगी? इसका मायने ये कि हम खुदा को हाजिर और नाजिर ही नहीं समझते कि खुदा हमको हर वक्त देख रहा है, हमारी हर चीज को निगरानी कर रहा है, सारे गुनाह उसके हमारे सामने, उसके सामने हमारे तमाम गुनाह जाहिर और आश्कार हैं, फिर भी हम ढिठाई के साथ और कमाले बेगैरती के साथ उन गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। इसका मतलब है कि खुदा वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा सही नहीं, हम खुदा को हाजिर और नाजिर ही नहीं समझते। जबकि हम देखते हैं कि कितने हमारे ऐसे उलमा गुजरे हैं, एक मिलता है कि आयतुल्ला मुल्ला हुसैन कोलिया हमादानी की सारी जिंदगी कभी सीधी टांगे फैलाकर नहीं सोए, कैसे टांगे फैलाऊं, महजर खुदा में हर वक्त हाजिर हूं, परवरदिगार मुझे देख रहा है, बेअदबी महसूस होती है। लेकिन हमसे इस बात का तकाजा नहीं किया गया कि हम टांगे फैलाकर ना सोए, ना हराम है, ना मकरूह है, ना कुछ है। लेकिन मैं एक वो बता रहा हूं कि ये ख्याल और इस्तेहजार जब इतना ज्यादा परवरिश पा जाता है इंसान के, तो कितना मोहतात हो जाता है। यानी समझ में नहीं आता, यानी टांगे कैसे फैलाऊं, महजर खुदा में हाजिर हूं कि बेअदबी कैसे करूं। कभी अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते थे बहुत ज्यादा, जिस तरह इंसान बाज़ोगात किसी पे चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, महज़र खुदा में हाजिर हूं, आवाज को कैसे बुलंद करूं। आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबतबाई के मुतालिक मशहूर है कि बहुत कम उनको कभी देखा गया, कभी टेक लगा के नहीं बैठते थे। जिस तरीके से इंसान टेक लगा के बाकायदा किसी चीज से बैठता है, बहुत कम बैठे देखा गया, यानी महज़र खुदा में अपने आप को हाजिर समझते। तो बहरहाल ये सब चीजें ऐसी हैं कि खुदा को हाजिर और नाजिर कहीं लिख कर लगाइए, कहीं आप अब जिस जगह बैठ के काम करती हूँ वहां पर लगाइए, खुदा हमें देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, हर जगह लिख के लगा दें, ताकि दिमाग में ख्याल रहे कि जो भी गुनाह मैं कर रही हूं खुदा हमको देख रहा है, ताकि इस गुनाह की तरफ ना जाने पाऊं। इसके और तरीके भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस पे मौजू पे कभी और गुफ्तगू होगी। और एक और अहम तरीन तरीका जिससे हम गुनाहों से बच सकते हैं, कि जिस वक्त भी हम इर्तिकाबे गुनाह का कोई मौका ऐसा आ जाए कि हमें मालूम है कि हम इस गुनाह के अंदर गिरफ्तार होने वाले, उस वक्त सच्चे दिल से एक झटके के साथ आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े सिदके दिल से, आप देखेंगे खुदा कैसे आपके दिल को उस गुनाह की तरफ से हटाता। जब कभी ऐसा मौका आ जाए कि आपको यकीन हो जाए कि अब मैं इस गुनाह में गिरफ्तार हो ही जाऊंगी, मैं होने वाली हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं इस गुनाह में गिरफ्तार हो जाऊंगी, सच्चे दिल के साथ एक दफा सिर्फ आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, फिर देखिए करिश्मा क्या होता। ऐसा परवरदिगार आपको उस जगह से निकालेगा, उस गुनाह से, और ऐसी बेरगबती पैदा करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ये भी एक तरीका इर्तकाबे गुनाह से अपने आप को बचाने का। उसके बाद अगला तरीका है, अगरचे इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हर चीज पे हो सकती है, लेकिन सब चीजें, अगर आप ज्यादा से ज्यादा नेकियों का हुक्म देने की और लोगों को बुराई से रोकने की आदि बन जाए, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, इसकी आदि अगर आप हो जाए, लेकिन उस खास तरीकेकार से जिसपे आपकी शायद पूरी डेढ़ डेढ़ घंटे की दो क्लासेस या तीन क्लासेस आपकी सिर्फ इसके फिकही मसाइल पे होंगी, अमरे बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कैसे किया जाता, वरना इंसान ज्यादातर बजाय सवाब के गुनाह में गिरफ्तार हो जाता है अगर इसके मसाइल को सही तौर पर ना पढ़ा जाए और हासिल ना किया जाए। लेकिन अमरे बिल मारूफ करने का लाजमी नतीजा ये होगा कि आप खुद उस गुनाह से बच जाएंगे, आपको शर्म महसूस होगी, अरे ये काम तो मैं भी करती हूं, तो आप पहले अपने आप को उससे रोकेंगी, और उसके बाद जब लोगों की आप आदी बन जाएंगी कि आप अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें, लोगों को नेकी की तरफ लाएं, बुराई से रोकें, तो एक मौका ऐसा आएगा कि आप खुद भी उन गुनाहों से रुक जाएंगी, जिसकी मिसाल आयतुल्लाह आकाए मोहसिन करती बयान करते हैं कि जिस तरीके से कपड़ा पाक करने वाले के हाथ कपड़ा को पाक करने के साथ साथ खुद भी पाक हो जाते हैं, अलग से पाक करने की जरूरत पेश नहीं आती। कपड़ा चले पाकी की तो छोड़ी, गंदा कपड़ा है, कोई शख्स अगर जो है कपड़े को धो रहा है और साबुन लगा रहा है और सब कुछ कर रहा है, उसके अपने हाथ भी तो साबुन के नतीजे में साफ हो रहे हैं, सफाई कर रहा है किसी और चीज की और साफ हो रहे हैं अपने हाथ, तो इसी तरीके से वो सफाई कर रहा है किसी और के गुनाहों की, उसको रोक रहा है गुनाहों से, उसे नेकियों की तरफ रागिब कर रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो खुद उन गुनाहों से और उन पाक साफ ना हो जाए और खुद उन नेकियों को ना करने लगे कि जिससे जिसकी तरफ वो दूसरों को रागिब कर रहा है और उसकी तरफ रगबत दिला रहा। इस पे लेकिन इंशाल्लाह ये भी तफसील से गुफ्तगू होगी, लेकिन इसके आप आदी बने। हम सोचते हैं कि क्योंकि हम भी ये करते हैं तो हम किस दूसरे को कैसे कह सकते हैं, इस वजह से ना उनको हम रोकते हैं और ना खुद उन गुनाहों से रोकते हैं। ये खुद एक बहुत बड़ी अहम चीज है जो आपको गुनाहों से रोक सकती। लेकिन वहां पर भी देखें, ईरान में भी अगर कोई बेपर्दा औरत इस तरह से जा रही है तो वो ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल आजाद हूं, हर शख्स को इस्लाम ने आजाद पैदा किया, मेरी जो मर्जी। नहीं, आपके बेपर्दगी से लोग खराब हो रहे हैं, माशरे को नुकसान पहुंच रहा है। जब कोई भी शख्स अगर सिग्नल को तोड़ता है तो ट्रैफिक पुलिस क्यों पकड़ती? वो कहे भाई मुझे तो कुछ नहीं, वो कहेंगे तुम्हारे ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ने से बहुत से लोगों की जान को खतरा हो जाएगा, इस वजह से हम तुमको रोक रहे हैं। अगर हमने डबल सवारी पे, यहाँ तो खैर जालिमाना पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन बिलफर्ज कहीं पाबंदी लगाई जा रही है तो अमनो अमान की वजह से हम लगा रहे हैं। तो बहरहाल अगर कहीं पे रोका जाता है तो इसके मायने ये होते हैं कि पूरा माशरे को खतरा हो रहा है। लेकिन ये वाला तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए, अमरे बिलमारूफ के मसाइल हासिल नहीं करेंगे तो जिस तरह से अफगानिस्तान में होता है, फिर वो वाला तरीक़ेकार, वो गलती हो जाएगी। तो इन तमाम तरीक़ेकार से अपने आप को बचाना है। ये तमाम इस्लाम से दूर ले जाने वाले तरीक़े हैं जिसमें लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जाता है। इंसान मौज़ हसना के जरिए बेहतरीन अंदाज से अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा इस्लामी अहकाम के तहत अदा करें, फिर उसके बाद वो उसका फ़ायदा नज़र आएगा। वरना आपने देखा कि कितना ज़्यादा इस्लाम इन हरकतों के नतीजे में बदनाम हो गया और लोग बजाय दीन की तरफ आने के उससे बरगश्ता होने लगे। तो इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ना है, अमर बिलमारूफ इस्लामी तरीक़ों से करना है। फिर उसके बाद उलमा फरमाते हैं जल्दी जल्दी कि हर काम का आगाज अगर आप बिस्मिल्लाह से करने की आदत डालें। बाकायदा आयतुल्ला सिस्तानी से तो पूछा भी गया कि ये जो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह है बतौर तबर्रुक है या इसका इस्तेहबाब अलग से साबित है कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। उन्होंने कहा कि तबर्रुक नहीं, यानी उस तौर पर नहीं कहा गया कि तबरीक के तौर पर या बरकत के लिए, बल्कि अलग से इसका इस्तेहबाब आया हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, अलग से मुस्तहब है ये। अच्छा, जब आप हर काम से पहले बिस्मिल्लाह की आदि हो जाएंगे तो खुद बखुद उस काम के अंदर अल्लाह की एक रजायत और अल्लाह की तरफ से एक रहमत और बरकत आ जाएगी। और फिर जब ये हर वक्त जब नाम खुदा इस तरह से जुबान के ऊपर आएगा तो फिर आपका दिल खुद बखुद गुनाहों की तरफ जाने को चाहेगा ही। ये गोया एक लिहाज से आपको खुद रोकेगा, परवरदिगार का जितना जिक्र आप करती जाएंगी ये खुद आपको गुनाहों से रोकेगा। यही वजह है कि हमारे एक आलिम गुजरे हैं जिनका नाम है था रजीउद्दीन इब्ने ताउस, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। और ये वो आलिम थे कि इनकी बाकायदा पूरी एक लाइब्रेरी हर जगह साथ चलती थी, ऊँटों पर 30-40 ऊँटों पर। अगर एक शहर से दूसरे शहर भी जाते थे तो मुताले के इतने रसिया थे कि एक लाइब्रेरी साथ जाती थी ऊँटों पर। रजीउद्दीन इब्ने ताउस, इनका तरीक़ेकार ये था, ये कभी भी किसी रोटी को और किसी खाने को और किसी एक लुकमे को भी बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े नहीं खाते थे। एक तो ये है ना हमारे यहाँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने पढ़ा और पूरा खाना उसके बाद खा गए, ये हर निवाले से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, हर अलग अलग निवाले पे अलग अलग बिस्मिल्लाह। कोई खाना, दो तीन खाने मसलन अगर रखे हुए हैं सामने, हर एक को खाने से पहले बिस्मिल्लाह। बल्कि घर की औरतों से पूछते थे कि जिस वक्त तुम रोटी आटा गूंद रही थी या रोटी पका रही थी तुम बावजू थी या नहीं थी, और दूसरा कि तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी या नहीं थी। अगर इनमें से कोई एक चीज भी कम होती थी तो रजीउद्दीन इब्ने ताउस उस वक्त का खाना नहीं खाते थे। कहा कि ठीक है मैं ऐसे गुजारा कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद जब अगला कोई मौका आता था तो उस वक्त फिर उनके घर की जो ख़वातीन थी वो इन बातों का, ज़ाहिर एक आध दफा ही कभी ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब मालूम है कि रजीउद्दीन इब्ने ताउस खाना ही नहीं खाएंगे तो वो हमेशा इस बात का फिर जो है वो लाजिमा करती थी कि जरूर बिज़रूर बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाए और बावजू होकर खाना पकाया जाए। तो बहरहाल देखें कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह का इतना ज़्यादा फायदा है। अच्छा, इसी तरीके से एक और तरीका है, लेकिन इस पर हम वैसे कभी और गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बहरहाल नौजवानों को बहुत से गुनाहों से बचाने के लिए उनकी जल्द शादी हो जाना ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तरबियत औलाद के सिलसिले में बाकायदा आप लोगों का पूरा सेमेस्टर होगा ही, तो उसमें हम तफसील बयान करेंगे। लेकिन ये कि अभी ये पढ़ जाए फिर उसके बाद जॉब हासिल कर ले और जॉब हासिल करने के बाद इतना पैसा कमाने लगे कि फिर ये इंडिपेंडेंटली भी रह सके, और इसमें लड़कों की और लड़कियों की उम्रें इतनी ज़्यादा निकलती चली जाती हैं, इतनी ज़्यादा निकलती चली जाती हैं। मशहूर है ना कि लतीफ़े के तौर पर बात कि जब 20 साल की लड़की होती है तो पूछती है कि लड़का कैसा है जब कोई रिश्ता आता है, फिर जब वो 30 साल की होती है तो पूछती है कि लड़का करता क्या है, और जब 40 साल की होती है तो वो कहती है कहाँ है। तो इस तरह से देर पे देर होती चली जाती, मुश्किलात खड़ी होती, तो बहुत से गुनाहों में भी इंसान गिरफ्तार हो जाता है। तो जितनी भी जल्द हो सके और घर वालों को भी चाहिए, उलमा ने अफसोस का इजहार किया। आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी ने इस मौजू पर बहुत काम किया और अफसोस का इजहार किया वालदैन के लिए कि आप जो कि थोड़ा सा भी आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है तो आपकी नींदें उड़ जाती हैं, उसको दुनिया जहान के डॉक्टरों के पास ले जाती हैं, लेकिन नफसियाती तौर पर कितनी परेशानियों का वो शिकार होता है शादी ना करने की वजह से, लेकिन आप देर पे देर करते चले जाते हैं, तो बड़ा अफसोस का इजहार किया ऐसे वालदैन पर जो इतनी ज्यादा ताखिर से काम लेते हैं अपनी कुछ खुद साख्ता ख्वाहिशात जो उन्होंने अपने तय बना रखी हैं उसकी तकमील के लिए, चाहे उसके के नतीजे में औलाद को कितना नुकसान क्यों ना हो जाए। तो बहरहाल इस पर कभी और तफसील से इस मौजू पर बात होगी, अभी तो इतना वक्त नहीं है हमारे पास, सवालात भी सिलसिले में बहुत सारे होंगे, फिर साहब के हल भी बताने पड़ेंगे आपको। तो बहरहाल एक तरीक़ेकार ये है, तो तकवा इस तकवे में इसी काम के जरिए इजाफा होगा कि इंसान अपने निस्फ दीन को तो सिर्फ शादी करके ही महफूज रख सकता। उसके बाद अगला तरीका है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना। कि गुनाहों के पूरे पूरे दीवान को फकत एक दुरूद भी खत्म कर सकता। इस नियत से भी कभी आप एक तस्बीह दुरूद की पढ़ें कि मुझसे गुनाह ना होने पाए, ये खुद इतनी ताकत रखती है। मैं इंशाल्लाह कभी और तफसील इसकी बताऊंगा, शायद अभी रमजान के करीब कुछ ऐसे आमाल हैं खास तौर पर कि उलमा बहुत ज्यादा असर पजीरी के कायल हैं उस सिलसिले में दुरूद पढ़ने की, कि अगर आप दुरूद पढ़ेंगे उस मखसूस नियत के साथ अपने कामों की अंजामदही के सिलसिले में वो काम आसानी के साथ हो जाएंगे, और प्लस ये क्या इंसान गुनाहों से भी इस अंदाज से बच सकता। उसके बाद अगला तरीका है हम हर अपनी जिस्मानी बीमारी के लिए दुख तकलीफ के लिए सदका देते हैं, लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि अपने गुनाहों से अपनी हिफाजत के लिए कि जिसका लाजमी नतीजा आग में जलना उसके लिए भी हम सदका दें। सदका खुद गुनाहों की आग को और आतिश जहन्नुम को बुझाने के लिए काफी होता है। अच्छा, अब ये जरूर है दिमाग में कि हर वक्त सदका देना, सदके की पहली और बुनियादी शर्त यह है कि सदका मुस्तहिक के हाथ तक पहुंचना चाहिए। आपने घर में सदका लेके अलग रख दिया, अलग दराज में डाल दिया, अपने पर्स में डाल दिया, किसी अलमारी के कोने में डाल दिया कि जब जमा हो जाएंगे तो फकीर को दूंगी, तो ये उस वक्त काउंट होगा जब फकीर के हाथ में पहुंच जाएगा। जब तक सदका शुमार नहीं होगा, जब तक आप ही के पास पड़ा रहेगा। तो इसका एक हल है, अब हम क्या करें, बाज़ोकात रात हो रही होती है, मरीज एकदम से कोई घर में हो गया, एकदम से बीमार पड़ गया, अब हमें सदका निकालना है, हम फकीर ढूंढने कहाँ जाएंगे? तो इसके बहुत सारे तरीके हम बताए गए। मसलन हम जहाज में सफर कर रहे हैं, एकदम से जहाज में टर्बुलेंस हुई, जहाज ऊपर नीचे होना शुरू हो गया, फौरन सदका देके अपनी बला को टालने का हुक्म है। अब किसको सदका दें वहां जहाज में? कुछ तरीके हैं कि जिसको किया जा सकता है। अभी उसी का तो बयान हो रहा है, बॉक्स दिखाया इस वजह से आपको। अब एक तरीकेकार ये है, दो तीन तरीके आप कर सकती हैं। या तो आपने अगर किसी को सदका दिया हुआ है, सदका, तो फिर आप सॉरी आपने कर्जा अगर किसी को दिया हुआ है, कर्जा अगर आपने किसी को दिया हुआ है तो आप उस कर्जे में से कुछ माइनस कर दें। जो आप कहेंगे भाई मैंने उसको 2000 रुपये कर्जा दिए हुए हैं, ठीक है 100 रुपये उसमें से मैं माफ करती हूँ, अब मैं अगर वो वापस करेंगे भी तो मैं 1900 लेके बाकी 100 रुपये उन्हें वापस कर दूंगा। खुद ब खुद आपको सदके का सवाब उसी वक्त मिल जाएगा दिमाग में कैलकुलेशन करने के नतीजे में, और जो बला टलनी है फौरन टल जाएगी। एक तो तरीकाकार ये। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उस मुस्तहिक से इजाजत ही ले लें जिसको आप अक्सर सदका पहुंचाती। आप कहेंगे भाई मैं आप ही को सदका दूंगी, या सदका का कहना भी जरूरी नहीं, आप उसकी मदद करती हैं, मैं जो मदद के पैसे हैं आप जो मुझसे 1000 रुपये लेकर जाते हैं तो मैं एक ही थोड़ा थोड़ा करके उनको निकालती हूँ, तो आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं 1 महीने तक रुपये अपने पास रखूं, जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तो जितने होंगे मैं आपको दे दूंगी। वो मुस्तहिक आपको इजाजत दे दे कि ठीक है मेरी तरफ से इजाजत है, तो जैसे ही आप सदका निकाल के अलग करेंगी वो फौरन सदके के सारे फायदे भी आपको दिलवा देगा, क्योंकि आप उस मुस्तहिक से इजाजत ले चुकी। ये दो तरीकेकार हो गए। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, वो भी समझेगा अच्छा ये रोजाना अपना सदका निकाल के हमें देती हैं, तो सदके में बताना भी जरूरी नहीं होता कि हम उसे सदका दे रहे हैं। तीसरा तरीका यह है कि हम हाकिम शरा या उसके नुमाइंदे से इजाजत ले लें, मुज्तहिद का वकील, क्योंकि गरीबों के उमूर का निगरान भी मुज्तहिद होता है, तो मुज्तहिद खुद या उसका वकील जो होता है, तो इसी मकसद के लिए खुद मदरसे ने भी संदूकची इस तरह के जो सदका बॉक्स जो है बनाए हुए हैं, और उसमें हमने हाकिम शरा के वकील की इजाज़त भी ले ली है कि अगर कोई शख्स अपने घर में संदूकची रखता है और या ये बॉक्स रखता है तो इसके अंदर जैसे ही पैसे डालेगा वो फौरी तौर पर यही शुमार हो जाएगा कि वो सदके के सारे फायदे भी आपको दिलवा देगा और ये शुमार हो जाएगा कि गोया फकीर के हाथ तक वो चीज़ पहुंच गई। तो ये तीन तरीके हैं कि जिससे वो फौरी आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले, तो यहाँ से आप मदरसे की इंतज़ामिया से ले भी सकती हैं, उसको आपको सहूलत पहुँचाने के लिए ही वो संदूकची स्कीम शुरू की गई है और मुस्तहकीन अक्सर जो होते हैं उससे उनकी इमदाद होती है और एक शरई पैमानों का ख्याल करते हुए और हाकिम शरा की इजाज़त याफ्ता संदूकची है तो आपको फौरन फ़ायदे दिलवा देगी वो। और सदक़े के लेकिन अलग से आप लोगों की क्लास भी होगी जिसमें सदक़े के फ़िक़ही अहकाम बयान किए जाएंगे। तो बहरहाल ये हाथ से निकलने वाला सदका इस नीयत से आप डालें कि मुझसे गुनाह ना होने पाए, तो जो भी नीयत आप सदका देते वक्त करेंगी वो इंशाल्लाह ज़रूर वो दुआ कबूल हो जाएगी। उसके बाद तिलावत कुरान करना, ये खुद गुनाहों से बहुत बचाने वाला अमल तिलावत कुरान। हम देखते हैं कितने बड़े बड़े उलमा कि कितना ज़िंदगी में ऐसे नेक अमल अंजाम दिए हैं सवाब जारिया के लिहाज से, लेकिन फिर भी हर वक्त कुरान से वाबस्ता नज़र आते हैं। तिलावत कुरान रोज़ाना की बुनियाद पर करना कि बाकायदा कुरान के अंदर एक आयत है कि पैगंबर इस्लाम बाकायदा शिकवा करेंगे कि परवरदिगार मेरी कौम ने कुरान को तनहा छोड़ दिया। कुरान की आयत है बाकायदा कि मेरी कौम ने कुरान को तनहा छोड़ दिया। तो कुरान को तनहा नहीं छोड़ना है, कुरान को पकड़े रहना है, और फकत तिलावत की हद तक नहीं, उस पर अमल के लिहाज से भी, लेकिन कम से कम तिलावत की हद तक तो इंसान रहे। ईरान के अंदर हम देखते हैं कि बाकायदा हरम इमाम रजा अलैहिस्सलाम बाकायदा खवातीन की तिलावत कुरान की महफिलें मुनक्किद होती हैं, इंतहाई डिसिप्लिन बेहतरीन, और खवातीन आकर वहां एक एक जुज जो है वो तिलावत करती हैं आकर, फिर दूसरी खवातीन वहां पर आ जाती हैं। तो क्यों कौम सारी दुनिया के मुकाबले में किस तरह से डटी हुई है और तरक्की भी कर रही है, और हम उसके बावजूद भी जबकि इतने अमन अमान में तब भी हमें तौफीक हासिल नहीं होती कि इस तरह से कोई अरेंजमेंट हम यहाँ पर कर सकें। इसी तरीके से मर्द हजरात हैं, यानी किस तरह से तिलावत कुरान कर रहे हैं कि एक अलग से एक तकद्दस और कुरान को अहमियत दी हुई है, क्यों तारीफ ना करें उनकी। मसलन लोग लाग कहते हैं कि भाई आप हर वक्त उन्हीं की तारीफ, भाई तारीफ के काबिल अफराद की तारीफ की नहीं, खुद एक नेक लोगों की नेकियां लोगों में उजागर करें, उनकी सताइश करें ताकि नेकियां माशरे में फलती फूलती नजर आए। हम सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं कि सारे बदकारों की हर वक्त सुबह शाम टीवी के ऊपर तारीफ होती रहती है। माशाल्लाह बहुत आप वर्सेटाइल फनकारा हैं और बहुत आपने माशाल्लाह बड़ी आपकी एल्बम रिलीज हुई है, खूब तारीफें हो रही हैं उनकी, जो नेकोकार हैं उनकी कोई तारीफ ही नहीं है कहीं पे भी, कोई तारीफ कर दे तो आप फौरन एजेंट करार दे देते हैं उनको। तो बहरहाल इसी तरीके से तिलावत कुरान के लिहाज से माजूर अफराद तक व्हील चेयर्स पर आते हैं और बाकायदा तिलावत कुरान इस लिहाज से करते हैं। घर पर खवातीन बाकायदा अपने घरों पर तिलावत कुरान की महाफिल मुनक्किद करती हैं, सारी खवातीन जमा हों और एक एक जुज तिलावत कुरान करें, उसके बाद कोई भी शीरीनी या कोई भी हिस्सा या तबरुक वगैरह तकसीम किया जाए, घर में एक बरकत होगी, नूरानियत होगी। बाकायदा इस तरह की चीज़ें घरों में पहले देखने में आता था इनकलाब के बाद तस्बीहों की, कि बहुत से अफराद तस्बीहों की महफिल मुनक्किद करते थे कि 10,000 दफ़ा मसलन दुरूद पढ़ेंगे या फला जिक्र करेंगे, और उसके बाद एक तरीक़ेकार होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी हमें माशरे के अंदर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो लिहाजा इन सबको उजागर करने की ज़रूरत है माशरे से। देखिए गुना और घर से गुना जब भी खत्म होंगे, जब ऐसी महफिलें घर में मुनक्किद होंगी वहां पर कहां आप ख्याल करती हैं कि वहां पर गुना पनप सकेंगे और लोग वहां के खराब हो सकेंगे। ऐसी नूरानियत होगी तो आप देख रहे हैं कि आपके आंखों के सामने कि हमें कहीं पाकिस्तान में नजर नहीं आता इस किस्म की कोई महफिल कहीं मुनक्किद की जाती हो, ना मर्दों में और ना औरतों में। बहरहाल ये इसको बदकिस्मती कहा जाए, हत्ता कि वहां पर स्कूलों में, यहाँ तो ये होता है स्कूलों में कोई फॉर्मली कोई बच्चा आ जाता है आगे जाके सूरह कुल हुवल्लाहु अहद मसलन पढ़ के एक मुख्तसर सूरह, यहाँ हर शख्स के हाथ में कुरान होता है या कोई पारा होता है, और अक्सर स्कूलों में वहां पर इस तरह से जो है वो बाकायदा तिलावत कुरान करवाई जाती है। और उसके बाद फिर अगला तरीका है कि आइम्मा से तवस्सुल करना, आइम्मा से तवस्सुल करके उनको वास्ता परवरदिगार को इन अफराद का वास्ता देकर उनको वसीला बनाकर कि हमें किसी तरीके से परवरदिगार गुनाहों से बचा ले, तुझे इन बुरगजीदा हस्तियों का वास्ता, हम या अली मदद अपने हर बस सिर्फ क्या गिरने जब कोई गिरने लगता है बच्चा उसी वक्त बस या अली मदद है कोई एकदम से बस अचानक से हम तो इसी मौके पे हमें या अली मदद कहते हुए अफराद नजर आते हैं। हर मुश्किल, गुनाहों की मुश्किल कितनी बड़ी है हमारे साथ, जो हमारी आखरत को तबाह बर्बाद करके रखी हुई है, इस काम के लिए भी या अली मदद कहा जाए कि पर ए अली आप हमारी मदद फरमाइए, हम अजाब के अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं, हमारा आकबत और आमाल देखते हैं तो अपना नतीजा में अच्छा नहीं नजर आ रहा, बल्कि यकीनी जहन्नुम नजर आ रही है, आप भी हमें बचा सकते हैं। फिर आप देखिए कि मौला इन मामलात में भी कैसी मदद करते हैं, फकत ये गिरने से बचाने के लिए थोड़ी। और इसी तरीके से आप एक दफा परवरदिगार की राह में आंसू बहा के तो देखिए, ये एक सिर्फ बहने वाला आंसू खौफ खुदा से यह आतिश जहन्नुम को भी खामोश कर देगा और आइंदा आने वाले गुनाहों से भी अपने आप को बचाएगा। चाहे रोना नहीं भी आ रहा, उस तसव्वुर लेकर आइए दिमाग में अपने गुनाहों का, आतिश जहन्नुम की जो बातें बयान की गई, अजाब कब्र जो बयान किए गए, बाकायदा इंसान आंखों में आंसू लेकर आए, फिर देखे कि गुनाहों से कैसे बचता है। वक्त इतना नहीं मेरे पास, आज सूरत में बात खत्म करनी है, वक्त खत्म होता चला जा रहा है। एक तरीका और भी है कि अपने दोस्त और सहेलियां हमेशा अच्छी बनाएं। अगर कोई भी आपने ऐसी कोई सहेली और दोस्त बनाई जो कि आपको बिगाड़ रही है और खराब कर रही है, तो ये बात याद रख लें कि वो दोस्त नहीं है, बल्कि वो एक गुच्छू है जो कि हमारी पूरी आखरत को खराब करके रख देगा। रे कुरान की आयात नहीं है, आप जाके पढ़े बाकायदा कि बहुत से लोग जहन्नुम में जाने के बाद अपने हाथों को अपने दांतों से काटेंगे कि काश हमने दुनिया में फुला शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता। बहुत से दोस्त और सहेलियां खराब करने वाली और जहन्नुम में ले जाने के लिए काफी। अभी तफसील का मौका नहीं, वरना कहा जाता है कि हज़रत नूह का जो बेटा खराब हुआ था उसको खराब करने वाले उसके दोस्त थे। जाफर कज़्ज़ाब जो इमाम ज़माना के मुकाबले में आकर खड़ा हुआ था, उसको खराब करने वाले दोस्त थे। बहुत सी रिवायात में ऐसे अफराद को सांप से भी तशबीह दी गई। तो ये दोस्त नहीं है और ये सहेलियां नहीं, ये बिच्छू और सांप हैं आपके लिए, कि जो कि खुद हम अपने लिए इस दुनिया में मुहैया करके जा रहे हैं अपनी कब्र के वास्ते। और फिर बहरहाल इंसान बाकायदा जहन्नुम में जाएगा और उस वक्त वहां जाकर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होगा कि काश मैंने दुनिया में अपने फला दोस्त को फला शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता। जुबान की हिफाजत ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने सुना कि सारे जो हैं वो गुनाह इसी जुबान के जरिए हो रहे हैं, और अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, बाबे तौबा खुला हुआ है। जो शख्स चाहे इस वक्त तौबा करे और उसको अपने तमाम पिछले गुनाहों को माफ करवा ले और एक नई जिंदगी का आगाज कर दे। और कोशिश ये करें कि बाकायदा हमें कहीं नजर नहीं आता कि माशरे में कुछ नेक और अच्छी खवातीन आकर बैठे हैं, कि माशरे में देखिए बेपर्दगी बहुत बढ़ती जा रही है, माशरे में म्यूजिक बहुत बढ़ता चला जा रहा है, हमारे बच्चे बहुत खराब हो रहे हैं, माशरे को गुनाहों से कैसे बचाएं, अब लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और लोग नेकियों की तरफ रागिब नहीं हो रहे हैं, दीनी मसाइल के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें, हमें कहीं खवातीन ऐसी मीटिंग करती नजर नहीं आ रही, फजूलियात की बातें हो रही हैं और कपड़े और जेवर ही की बातें हो रही, कि आपकी जिंदगी का मकसद फकत यही रह गया है कि इन फजूलियात के अंदर अपने वक्त को लगाएं। बिल्कुल एक अच्छे वक्त को आप क्यों माशरे की तबलीग के हवाले से अपने वक्त को क्यों नहीं लगाती, आप बैठ के मीटिंग क्यों नहीं करती चार पांच खवातीन मिलकर। मैंने अभी जैसे कहा कि किसी भी जगह दर्स का इनेकाद करना है तो बहुत बड़ी तादाद नहीं चाहिए, फकत तीन चार खवातीन चाहिए जो आकर बैठे, एक प्लान तैयार करें अपने साथ कुछ। फिर जब देखिए जब लोग आते गए और कारवा बनता गया, वो वाली मिसाल होने लगती है कि फिर दो तीन चार अफराद जमा होते तो फिर बाद में बहुत सारे लोग आपके साथ नेक काम को देखकर शामिल हो जाएंगे, लेकिन आगाज आपको खुद करना पड़ेगा। तफसील अगरचे अगर अभी बहुत बाकी थी, लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा सा वक्त बल्कि ज़्यादा ही ले लिया, आज बस ये मौजू मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी वो तो खैर एक कम्बाइंड क्लास होगी, सारे ग्रुप्स की कम्बाइंड होगी, और वो भी एक अहम तरीन मौजू है जो अगली इतवार को इंशाल्लाह ज़ेर बहस आएगा। तो बहुत सारे सवालात भी आपके आ गए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आज ही अगर मुमकिन हुआ इनके जवाब लिखने तो आज ही लिख के नीचे रिसेप्शन पे दे दूँगा, वरना फिर ये कि इंशाल्लाह अगली जो नशिस्त होगी उससे पहले आप रिसेप्शन से जाकर ले सकती हैं इनके जवाब। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।